चलिए एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति की कल्पना करते हैं। सोचिए कि दुनिया की सबसे बड़ी मतलब सबसे सफल मल्टीनेशनल कंपनी का एक नया सीईओ चुना जाता है।
किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होगी।
बिल्कुल, और ये इसका पहला दिन है। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि वो सीधा अपने शानदार कॉर्नर ऑफिस में जाएगा, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा।
यही तो सत्ता का सामान्य नियम है,
है ना? लेकिन इसके बजाय वो इंसान सीधा कंपनी के बेसमेंट में जाता है और एक जूनियर इंटर्न के सामने बैठकर कंपनी की सबसे बेसिक इंटर्नशिप का टेस्ट देने लगता है।
अरे बापरे।
हाँ, मतलब सुनने में ये किसी पागलपन या बहुत ही खराब पीआर स्टंट जैसा लगता है।
देखिए, ये निश्चित रूप से आज की कॉर्पोरेट दुनिया के हर नियम के खिलाफ है। आधुनिक दुनिया में हम सत्ता को एक पिरामिड की तरह देखते हैं। जो सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे वालों से अपनी श्रेष्ठता साबित करवाता है, वो खुद को उनके स्तर पर नहीं गिराता।
ठीक है, तो आइए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं, क्योंकि आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस ऐतिहासिक घटना का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं उसकी शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही एक चौंकाने वाले दृश्य से होती है।
बिल्कुल,
हमारे पास प्राचीन ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों का एक बहुत ही शानदार भंडार है, खासकर डॉक्टर क्रेग कीनर के मैथ्यू अध्याय 3 और 4 के नोट्स। हमारा आज का मिशन यह समझना है कि प्राचीन काल में सत्ता, शक्ति, लीडरशिप और किसी साम्राज्य की अवधारणाएं वास्तव में कैसी थीं।
और ये समझना बहुत जरूरी भी है।
हाँ, और जैसे जैसे हम इन स्रोतों के पन्ने पलटेंगे हमें पता चलेगा कि ये ग्रंथ आज की हमारी सक्सेस स्टोरी वाली मानसिकता की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देते हैं।
और यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, अक्सर लोग इन प्राचीन ग्रंथों को बस पुरानी जादुई कहानियों की तरह पढ़ते हैं।
हाँ, बिना संदर्भ के।
सही कहा, ये एक बहुत बड़ी भूल है। अगर हम इन घटनाओं को उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक परिदृश्य के चश्मे से न देखें तो हम उस वास्तविक विद्रोहों को मिस कर देंगे जो इन पन्नों में दर्ज है।
मतलब ये घटनाएं अपने समय के समाज के लिए किसी भूकंप से कम नहीं थीं।
बिल्कुल।
तो कहानी शुरू होती है उस इंसान से जिसे पूरी दुनिया का राजा और उद्धारकर्ता स्थापित किया जाना है, यानी यीशु। लेकिन वो अपना राज्याभिषेक करवाने के बजाय यर्दन नदी के किनारे जाते हैं जहां बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना मौजूद हैं।
हाँ, एक बिल्कुल अप्रत्याशित जगह।
अब देखिए, यूहन्ना खुद कह रहे हैं कि वो यीशु के सामने कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि उनका पानी का बपतिस्मा यीशु के आने वाले पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के सामने एक बहुत मामूली चीज है। फिर भी यीशु इस बात पर अड़ जाते हैं कि यूहन्ना ही उन्हें बपतिस्मा दे। हमारे स्रोत बताते हैं कि आधुनिक इतिहासकार इस घटना को क्राइटेरियन ऑफ एम्बैरेसमेंट या शर्मिंदगी का मापदंड कहते हैं।
हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सिद्धांत है।
मुझे ये बहुत अजीब लगा, मतलब इतिहासकार किसी ऐतिहासिक घटना की सच्चाई को शर्मिंदगी से क्यों नाप रहे हैं?
देखिए, ये इतिहास को परखने का एक बहुत ही प्रामाणिक टूल है। सोचिए, प्राचीन काल में कोई भी लेखक या अनुयायी अपने नायक की कोई ऐसी कहानी क्यों गढ़ेगा जो उस नायक को कमजोर दिखाए।
अच्छा, मतलब कोई जानबूझकर ऐसा क्यों लिखेगा?
बिल्कुल, अगर कोई यीशु को भगवान या सर्वशक्तिमान राजा साबित करना चाहता तो वो कभी भी ये नहीं लिखता कि यीशु ने एक ऐसे इंसान से दीक्षा ली जो पद में उनसे छोटा था।
हाँ, ये तो पीआर के हिसाब से बहुत खराब है।
एकदम सही, ये नायक की छवि के लिए शर्मिंदगी की बात थी। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस घटना के सच होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि ये इतनी अजीब और असुविधाजनक है कि कोई इसे अपनी कल्पना से गढ़ ही नहीं सकता।
सत्ता के पारंपरिक स्वरूप पर पहला सीधा प्रहार थी। सच्चा नेतृत्व किसी ऊंचे सिंहासन से शुरू नहीं हो रहा है, बल्कि सेवा, विनम्रता और बिल्कुल जमीनी स्तर पर उतरने से शुरू हो रहा है।
और इसके ठीक बाद जो होता है वो इस पूरी स्थिति को और भी रहस्यमय और गहरा बना देता है।
हाँ, ग्रंथों के अनुसार आसमान से एक आवाज आती है, हमारे नोट्स में से प्राचीन रब्बियों की भाषा में बटकोल या स्वर्गीय आवाज कहा गया है। ये आवाज कहती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है।
लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा वैचारिक ट्विस्ट है।
हाँ, क्योंकि ये आवाज प्राचीन यहूदी धर्म ग्रंथों के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों का मिश्रण थी, भजन संहिता अध्याय 2 और यशाया अध्याय 42।
और यहीं पर इस घटना की सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति छुपी है।
वो कैसे?
देखिए, भजन संहिता 2 एक विजयी शक्तिशाली राजा के बारे में है। जो अपने दुश्मनों को लोहे के डंडे से तोड़ देगा, सत्ता और ताकत का प्रतीक। वहीं यशाया 42 एक पीड़ित सेवक के बारे में है जो दूसरों के दुख उठाएगा और चुपचाप सह लेगा। अब प्राचीन यहूदी समाज में राजा और पीड़ित सेवक, ये दोनों बिल्कुल विपरीत छवियां थीं।
मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते।
बिल्कुल नहीं। राजा कभी सेवक नहीं होता और सेवक कभी राजा नहीं हो सकता, लेकिन उस बटकोल ने इन दोनों को एक ही इंसान में मिला दिया।
अच्छा।
यह एक स्पष्ट घोषणा थी कि यह नया राजा शासन तो करेगा, लेकिन तलवार से नहीं बल्कि अपना बलिदान देकर।
ये तो बहुत ही गहरी बात है, और उसी समय पवित्र आत्मा का एक फाख्ता या कबूतर के रूप में आना। डॉक्टर कीनर के नोट्स बहुत स्पष्ट करते हैं कि यह सिर्फ शांति का कोई आम प्रतीक नहीं था।
नहीं, इसका संबंध बहुत पुराने इतिहास से है।
हाँ, ये उत्पत्ति अध्याय 8 में नूह की कहानी का सीधा संदर्भ है, जहाँ जल प्रलय के बाद कबूतर सूखी जमीन और एक न्यू क्रिएशन या नई रचना का संदेश लेकर आता है।
सटीक कहा आपने। वो कबूतर इस बात का प्रतीक था कि पुरानी भ्रष्ट दुनिया का अंत हो रहा है और सत्ता तथा मानवता को देखने का एक बिल्कुल नया युग शुरू हो रहा है।
लेकिन मुझे एक बड़ी तार्किक समस्या दिखती है।
कैसी समस्या?
मान लीजिए कि आपको स्वर्ग से इतना बड़ा वैलिडेशन मिल गया है, आपको पूरी दुनिया का राजा घोषित कर दिया गया है, तो इसके बाद का कदम क्या होना चाहिए?
शायद एक बड़ा जश्न।
हाँ, एक पीआर कैंपेन या यरूशलेम जाकर एक शानदार महल पे कब्जा करना। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगले ही पल पवित्र आत्मा उन्हें सीधे एक बंजर खतरनाक रेगिस्तान में धकेल देती है, भूखे प्यासे जंगली जानवरों के बीच। ये कैसा राजा है जिसे ताज पहनाने के बजाय सीधा जंगल में मरने के लिए भेज दिया गया?
देखिए, ये हमारी आधुनिक सक्सेस की समझ और प्राचीन आध्यात्मिक तैयारी के बीच का सबसे बड़ा टकराव है।
अच्छा।
बाइबल में ये एक बहुत ही स्थापित और गहरा पैटर्न है। सफलता और आराम की बजाय ईश्वर की आत्मा अक्सर लीडर्स को जानबूझकर कठिनाइयों और एकांत की ओर ले जाती है।
मतलब ये कोई संयोग नहीं था?
बिल्कुल नहीं। मूसा को लीडर बनने से पहले 40 साल रेगिस्तान में भेड़े चराने के लिए भेजा गया। जोसेफ ने मिस्र का शासक बनने से पहले गुलामी झेली और सालों जेल में काटे। राजा दाऊद को शासक चुने जाने के बाद भी सालों तक एक अपराधी की तरह गुफाओं में छिपकर भागना पड़ा।
ये तो ऐसा है जैसे स्टील को आकार देने से पहले उसे भयानक आग के भट्टी में तपाया जा रहा हो। उस भयंकर गर्मी के बिना स्टील में वो ताकत आई नहीं सकती।
बिल्कुल सही उपमा है।
हमारे स्रोतों में डॉक्टर कीनर ने खुद की एक बहुत ही व्यक्तिगत और झकझोर देने वाली कहानी साझा की है। उन्होंने बताया कि उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन पर झूठे आलोप लगे।
हाँ, वो बहुत कठिन दौर था उनके लिए।
उन्हें लगा कि उनका करियर, उनका मंत्रालय, सब कुछ पल भर में छिन जाएगा। वो एक गहरे मानसिक रेगिस्तान में थे, लेकिन उस शून्यता में उन्हें एक बहुत गहरी बात समझ में आई कि वो सिर्फ मिट्टी और राखटे बने हैं। उनका घमंड पूरी तरह टूट गया।
और उस रेगिस्तान का मुख्य मनोवैज्ञानिक उद्देश्य भी यही होता है, इंसान के अहंकार को पूरी तरह तोड़ना। जब किसी इंसान से उसका भोजन, उसकी भौतिक सुविधाएं और सबसे बढ़कर उसकी ऑडियंस या तालियां बजाने वाले लोग छीन लिए जाते हैं, तो उसे अपने असली स्वरूप का सामना करना पड़ता है।
मतलब वहां आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते।
एकदम सही। उस एकांत में कोई मुखौटा काम नहीं आता। लीडरशिप के लिए ये सबसे जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता के प्रलोभन से मुक्त नहीं है, वो सत्ता मिलते ही एक अत्याचारी बन जाएगा।
लेकिन मैं यहाँ थोड़ा विरोध करना चाहूंगी।
जी बताइए।
अगर पवित्र आत्मा ही जानबूझकर मुश्किलों की ओर धकेल रही है, तो क्या ये विचार लोगों को अच्छाई के रास्ते से डराता नहीं है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान सही रास्ते पर चल रहा है, तो उसे सिर्फ दुख और प्रताड़ना ही मिलेगी?
देखिए, कठिनाई को किसी सजा के रूप में देखना इस पूरी अवधारणा की गलत व्याख्या है।
अच्छा।
हाँ, ये दुख सहने के लिए दुख सहना नहीं है, ये असल में एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। आधुनिक समाज हमें सिखाता है कि हर दर्द से भागो, हर असुविधा को खत्म कर दो।
बिल्कुल, तुरंत आराम चाहिए सबको,
है ना? लेकिन वो रेगिस्तान हमें ये सिखाता है कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तब भी हमारे अंदर क्या बचता है। ये हमारी बुनियाद को परखने का तरीका है, ताकि जब दुनिया की ताकत या पैसा हमारे पास आए, तो वो हमें भ्रष्ट ना कर सके।
ये बहुत ही गहरी बात है। और वो रेगिस्तान केवल शारीरिक भूख का स्थान नहीं था। श्रोत बताते हैं कि ये एक बौद्धिक और वैचारिक युद्ध का मैदान भी था।
हाँ, विचारों की एक बहुत बड़ी लड़ाई।
बिल्कुल, ये एक लड़ाई थी कि जिन प्राचीन ग्रंथों पर हम विश्वास करते हैं, उनका असली अर्थ क्या है, क्योंकि शैतान वहां आता है और पहली ही चुनौती फेंकता है, अगर तुम सच में भगवान के बेटे हो। ये सुनकर मुझे तुरंत उत्पत्ति अध्याय 3 की याद आ गई, जहां सांप ने भी बिल्कुल यही तरीका अपनाया था, संदेह पैदा करना।
ये एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक हमला है। शैतान त्रिशूल लेकर या किसी भयानक राक्षस के रूप में नहीं आता।
हाँ, वो तो फिल्मों में होता है।
बिल्कुल, वो सत्ता के बहुत ही आकर्षक और तार्किक दिखने वाले वैकल्पिक मॉडल पेश करता है। वो भूखे यीशु से कहता है कि पत्थरों को रोटी बना दो,
जो कि सुनने में कोई बुरा काम नहीं लगता।
सही कहा, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा जादूगर बन जाना जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी भूख मिटाने और लोगों को चमत्कारों से खुश करने के लिए करता है।
समझ गई।
फिर वो दुनिया के सारे राज्यों की झलक दिखाकर कहता है कि मेरे सामने झुक जाओ, यानी एक राजनीतिक विद्रोही या एक सांसारिक तानाशाह बन जाओ जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है।
और यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि शैतान भी धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल करता है।
बिल्कुल, वो कोई अज्ञानी नहीं है।
वो भजन संहिता 91 की लाइनें कोट करता है। वो कहता है कि मंदिर की सबसे ऊंची चोटी से कूद जाओ, ग्रंथों में लिखा है कि भगवान के फरिश्ते तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। ये सुनकर मेरे दिमाग में तुरंत आज के इंटरनेट ट्रोल्स की छवि बन गई। आप जानते ना, वो लोग जो किसी 2 घंटे के इंटरव्यू में से 5 सेकंड का क्लिप निकालते हैं।
हाँ, और उसका पूरा मतलब ही बदल देते हैं।
बिल्कुल, उसे मूल संदर्भ से पूरी तरह बाहर करते हैं, जिसे हम चेरी पिकिंग कहते हैं, और सोशल मीडिया पर किसी को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शैतान यहाँ किसी हथियार से नहीं बल्कि आधी अधूरी जानकारी से हमला कर रहा है।
ये तुलना बिल्कुल सटीक है। आधुनिक मीडिया लिटरेसी का एक प्राचीन मास्टर क्लास है। शैतान ने भजन संहिता 91 का जो हिस्सा उठाया, उसका मूल अर्थ यह था कि जब कोई इंसान अपने कर्तव्य के पथ पर हो और उस पर कोई बाहरी खतरा आए तो ईश्वर रक्षा करता है।
मतलब वो स्टंट करने के लिए नहीं था।
बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि कोई इंसान जानबूझकर भगवान की परीक्षा लेने के लिए खुद को छत से नीचे गिरा दे।
तो यीशु ने इस चेरी पिकिंग का जवाब कैसे दिया?
उन्होंने व्यवस्था विवरण या ड्यूटरोनॉमी के सटीक और संपूर्ण संदर्भों का इस्तेमाल किया।
हाँ, उन्होंने कहा कि इंसान केवल रोटी से नहीं जीता, ईश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और केवल उसी की पूजा करनी चाहिए। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि किसी भी विचारधारा, किसी भी धार्मिक या राजनीतिक पाठ को उसके समग्र संदर्भ में समझे बिना अपनाना कितना खतरनाक हो सकता है।
एकदम सही,
आधा अधूरा ज्ञान हमेशा सत्ता के दुरुपयोग की ओर ले जाता है।
बिल्कुल, और इस वैचारिक और मानसिक परीक्षा को पास करने के बाद सत्ता और लीडरशिप का एक नया खाका तैयार हो गया था। अब बारी थी इस मिशन को जमीन पर उतारने की।
और यहीं पर एक और अजीब फैसला सामने आता है। अगर किसी को एक नए साम्राज्य की स्थापना करनी हो तो वो अपनी राजधानी कहाँ बनाएगा?
जाहिर है किसी बड़े शहर में।
आन यरूशलेम जैसी भव्य जगह पर, जो उस वक्त धर्म और सत्ता का केंद्र था। लेकिन यीशु ने यरूशलेम को नहीं चुना, उन्होंने उत्तर के एक इलाके गलील को चुना, और विशेष रूप से कफरनहूम नाम के एक छोटे से शहर को। हमारे स्रोत इस भौगोलिक चुनाव के बारे में क्या बताते हैं?
देखिए, कफरनहूम का चुनाव बहुत ही रणनीतिक था। यरूशलेम सत्ता के नशे में चूर था, वहाँ कोई नया विचार आसानी से पनप नहीं सकता था।
वहाँ बहुत प्रतिरोध होता।
बिल्कुल, इसके विपरीत कफरनहूम भले ही कुछ हजार लोगों की आबादी वाला एक छोटा शहर था, लेकिन ये एक प्रमुख व्यापारिक चौराहा था।
अच्छा,
वहाँ से कई महत्वपूर्ण रास्ते निकलते थे। एक नया विद्रोही संदेश वहाँ से बहुत तेजी से दूर दूर तक फैल सकता था।
गलील की बात करते हुए, हमारे नोट्स में एक बहुत ही अजीब ऐतिहासिक मोड़ का जिक्र है, जिसने मुझे सच में चौंका दिया।
आप वाल्टर ग्रुंडमैन की बात कर रही हैं ना?
हाँ, वाल्टर ग्रुंडमैन नाम का एक नाजी धर्मशास्त्री था। उसने ये साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि गलील पूरी तरह से एक गैर यहूदी इलाका था। उसका मुख्य एजेंडा यीशु को डी जुडाइज करना था, यानी ये साबित करना कि यीशु यहूदी नहीं थे। मैं ये सोच रही हूँ कि 20वीं सदी के एक नाजी विचारक को पहली सदी के भूगोल में इतनी दिलचस्पी क्यों थी?
क्योंकि सत्ता हमेशा इतिहास और भूगोल को अपने फायदे के लिए तोड़ना मरोड़ना चाहती है। नाजी विचारधारा ये कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी कि जिस मसीहा को पूरे यूरोप में पूजा जाता है वो उसी यहूदी जाति का हिस्सा था जिसे वे खत्म करना चाहते थे।
बापरे, ये तो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा था।
बिल्कुल, इसलिए ग्रुंडमैन ने इतिहास में अपने मतलब की चेरी पिकिंग की। लेकिन आधुनिक पुरातत्व या आर्कियोलॉजी ने इस नाजी प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।
हाँ, सच्चाई सामने आ ही गई।
खुदाई से पता चला है कि उस समय गलील में यहूदी बस्तियां बड़े पैमाने पर फैली हुई थी। वास्तव में ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि गलील के लोग इतने धर्मनिष्ठ थे कि वे धार्मिक त्योहारों के लिए तीन तीन दिन पैदल चलकर यरूशलम जाते थे।
मतलब तथ्य हमेशा वैचारिक रूप से प्रेरित झूठ को हरा ही देते हैं।
बिल्कुल हरा देते हैं।
और इसी कफरनहूम से यीशु ने अपने मुख्य संदेश का प्रचार शुरू किया, स्वर्ग का राज्य। अब इस राज्य की अवधारणा बहुत ही जटिल और आकर्षक है। स्रोतों में ग्रीक शब्द अराबोन का जिक्र है, जिसका अर्थ है डाउन पेमेंट या बयाना।
ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है।
मतलब ये राज्य आ भी चुका है, जिसे हम ऑलरेडी कहते हैं, और अभी पूरी तरह से आना बाकी भी है, यानी नॉट येट। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई इंसान घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट दे देता है। कागजों पर घर उसका हो चुका है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से उसमें शिफ्ट नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ये विचार थोड़ा परेशान करता है।
क्यों, इसमें क्या परेशानी है?
क्या इस ऑलरेडी नॉट येट वाले अधूरे राज्य में जीने से इंसान के अंदर एक अजीब सी बेचैनी या एंग्जाइटी पैदा नहीं होती? हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां न्याय का वादा तो है, लेकिन असलियत में चारों तरफ अन्याय और बीमारियां भी हैं।
देखिए, ये बेचैनी बहुत वास्तविक है, और धर्मशास्त्र में इसे इंट्रूसिव एमिनेंस या दखल देने वाली निकटता कहा जाता है। लेकिन ये बेचैनी नकारात्मक या डराने वाली नहीं है। सोचिए, जब किसी इंसान को पता होता है कि भविष्य में एक पूर्ण और न्यायपूर्ण राज्य आने वाला है, और उसकी एक झलक या डाउन पेमेंट उसे अभी मिल चुकी है, तो वो वर्तमान की बुराइयों को सामान्य मानकर स्वीकार नहीं कर सकता।
अच्छा, मतलब वो चुप नहीं बैठेगा?
बिल्कुल, ये बेचैनी उसे वर्तमान अन्याय के सामने घुटने टेकने से रोकती है। ये उसे वर्तमान दुनिया की कमियों से समझौता न करने और भविष्य की आशा में सक्रिय रूप से काम करने की प्रेरणा देती है। ये एंग्जाइटी नहीं है, ये एक विद्रोही आशा है।
एक विद्रोही आशा? अरे वाह, ये नजरिया सच में बहुत ताजा है। अब इस नए विद्रोही राज्य को जमीन पर उतारने के लिए एक टीम की, या कहें कि कैबिनेट की जरूरत थी।
बिल्कुल, अकेले तो कोई आंदोलन खड़ा नहीं होता।
लेकिन दुनिया बदलने के लिए उन्होंने जिन लोगों को चुना, वो चुनाव उस समय के समाज के हर नियम के बिल्कुल खिलाफ था। उन्होंने मछुआरों को चुना। और यहाँ एक मिथक को तोड़ना बहुत जरूरी है।
जी, बताइए।
हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये मछुआरे कोई बेहद गरीब भूमिहीन किसान नहीं थे। उनके पास अपना व्यवसाय था, अपनी नावें और जाल थे, और कुछ के पास तो काम करने वाले नौकर भी थे। फिर भी एक आवाज पर उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया।
लीडरशिप का एक बिल्कुल असामान्य रूप था।
वो कैसे?
प्राचीन काल में सुकरात या प्लेटो जैसे महान गुरु शिष्य नहीं खोजते थे। शिष्य ज्ञान के लिए खुद गुरुओं के पास जाते थे और खुद को साबित करते थे।
हाँ, यही तो परंपरा थी।
यीशु को खुद जाकर समाज के साधारण कामकाजी लोगों को बुलाना ही एक बहुत बड़ा वैचारिक बयान था। और जहां तक सब कुछ छोड़ने की बात है, हमें इसे पहली सदी के समाज के नजरिए से समझना होगा। अपना पारिवारिक व्यवसाय और पिता को छोड़ने का मतलब केवल आर्थिक नुकसान नहीं था, ये समाज में एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता था।
हाँ, समाज की नजरों में ये तो पूरी तरह से बहिष्कार का कारण बन सकता था। ये मुझे आज के कैंसल कल्चर की याद दिलाता है।
बहुत सही जोड़ा आपने।
आज जो इंसान इंटरनेट पर हीरो है, अगर वो समाज के तय नियमों से थोड़ा भी भटके तो अगले ही दिन उसे पूरी तरह से कैंसल कर दिया जाता है। उस समय परिवार और सदियों पुराना पुश्तैनी काम छोड़ना समाज द्वारा कैंसल किए जाने के बराबर ही रहा होगा। लेकिन क्या इसका मतलब सचमुच अपनी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भागना था? क्या वो लोगों को लापरवाह बना रहे थे?
बिल्कुल नहीं, ये जिम्मेदारियों से भागने के बारे में नहीं था, बल्कि प्राथमिकताओं को रीसेट करने के बारे में था।
अच्छा।
स्रोतों में रब्बी अकीबा की एक प्रसिद्ध यहूदी कहानी का जिक्र है, जो अपनी पत्नी की सहमति से तोरा के अध्ययन के लिए 7 साल तक घर से दूर रहे थे। हालांकि यह कहानी शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, लेकिन ये दर्शाती है कि उस समाज में किसी उच्च ईश्वरीय उद्देश्य के लिए परिवार से दूर रहना जायज और सम्मानजनक माना जा सकता था।
मतलब ये पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं था।
बिल्कुल, यीशु ने खुद विवाह के प्रति वफादारी और माता पिता के सम्मान पर बहुत जोर दिया है। संदेश ये था कि जब भी परिवार के आराम और ईश्वरीय न्याय या उद्देश्य में टकराव हो, तो उद्देश्य हमेशा सर्वोच्च होना चाहिए।
और ये उद्देश्य केवल दर्शन या बड़ी बातों तक सीमित नहीं था। उन्होंने सीरिया और गैलील के हर कोने में जाकर शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार लोगों को ठीक करना शुरू किया।
जी,
डॉक्टर कीनर के नोट्स स्पष्ट करते हैं कि ग्रंथों में लिखा है कि सभी बीमारों को उनके पास लाया गया। ये एक साहित्यिक अतिशयोक्ति या हाइपरबोल है।
हाँ, जो उस समय लिखने का एक आम तरीका था।
लेकिन इसके पीछे जो विश्वास और लोगों का संघर्ष था वो कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। डॉक्टर कीनर ने अफ्रीका के केन्या की एक बहुत ही मार्मिक कहानी का जिक्र किया है।
हाँ।
वो कहानी सच में बहुत प्रभावशाली है।
एक छोटी बच्ची थी जिसके पैर काम नहीं करते थे। उसकी माँ ने उस बच्ची को अपनी पीठ पर लादा और एक उफनती खतरनाक नदी को पार करके सिर्फ इसलिए ले गई ताकि उस बच्ची के लिए प्रार्थना की जा सके। ये कहानी दिखाती है कि इस तरह के गहरे विश्वास और चमत्कार के लिए इंसान को कितना बड़ा जोखिम और बलिदान देना पड़ता है।
और यहीं पर हमें एक बहुत गहरी सच्चाई समझनी होगी।
क्या?
जब हम किसी चमत्कार या किसी की सफलता को देखते हैं तो हम अक्सर उसके पीछे के खून, पसीने, संघर्ष और जोखिम को नजरअंदाज कर देते हैं। यीशु के इन चमत्कारों और गरीबों की भलाई के कामों ने उन्हें रातों रात बहुत लोकप्रिय बना दिया।
हाँ, हजारों की भीड़ उनके पीछे पीछे चलने लगी।
बिल्कुल, लेकिन अध्याय 4 के अंत में जो ये भारी लोकप्रियता दिखती है वो इस पूरे ग्रंथ की सबसे बड़ी चेतावनी भी है। वो कैसे?
देखिए, क्योंकि लोकप्रियता हमेशा एक भ्रम होती है, ये एक छलावा है।
अच्छा।
जो भीड़ आज चमत्कार देखकर तालियां बजा रही है और उनके पीछे भाग रही है, वही भीड़ इस कहानी के अंत में अध्याय 27 में क्या करती है? वही भीड़ सत्ता के दबाव में आकर चिल्लाती है, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे सूली पर लटका दो। भीड़ कभी वफादार नहीं होती, वो केवल फायदे और तमाशे के पीछे भागती है।
बापरे, ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और ये आज की दुनिया पर भी कितना सटीक बैठता है।
बिल्कुल बैठता है।
चाहे आप पहली सदी के गलील में हो या आज की कॉरपोरेट और सोशल मीडिया की दुनिया में, सवाल यही है कि क्या कोई इंसान सिर्फ भीड़ की तालियां और लाइक्स के लिए काम कर रहा है या किसी गहरे स्थायी उद्देश्य के लिए। क्योंकि जब परीक्षा का समय आता है, जब कोई मुश्किल आती है, तो तालियां बजाने वाले सबसे पहले गायब हो जाते हैं।
एकदम सही। सच्चा नेतृत्व वो है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट रहे और लोकप्रियता के इस भ्रम में कभी ना फंसे। महानता कभी भी भीड़ के शोर से तय नहीं होती।
बिल्कुल। तो इस पूरे गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इसका मतलब क्या निकलता है?
बहुत सारे गहरे सबक हैं इसमें।
हाँ, इन प्राचीन ग्रंथों ने सत्ता और सफलता की हमारी आधुनिक परिभाषा को पूरी तरह से उलट दिया है। सत्ता का असली मतलब दूसरों पर हुक्म चलाना या कॉर्नर ऑफिस पाना नहीं है, बल्कि विनम्रता से शुरुआत करना और सेवा करना है।
जिंदगी का रेगिस्तान या मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारी कमजोरियों को जलाकर हमें उस स्टील की तरह मजबूत बनाने के लिए आती हैं।
बिल्कुल सही।
और सबसे बड़ी बात, यह हमें सिखाता है कि हमें किसी भी विचार, किसी भी डेटा या किसी भी विचारधारा को बिना उसके सही संदर्भ को समझे आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए, चाहे वो सुनने में कितना भी आकर्षक क्यों न लगे।
ये आज के समय के लिए बहुत जरूरी संदेश है। और इस शानदार चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार जो इन ऐतिहासिक पन्नों से बहुत ही मजबूती से उभर कर आता है वो ये है कि हम आज भी उसी ऑलरेडी नॉट येट वाले दौर में जी रहे हैं।
हाँ, दुनिया में कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी भी अधूरा है।
बिल्कुल। तो एक सवाल है जिस पर हम सभी को और श्रोताओं को भी विचार करना चाहिए। यदि मानवता आज भी इसी अधूरेपन, अन्याय और निरंतर संघर्ष के बीच जी रही है, तो क्या हमारी आधुनिक इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन या तुरंत सब कुछ पा लेने की चाह वाली संस्कृति हमें उस अधूरेपन से भागना सिखा रही है?
बहुत गहरा सवाल है।
हम हर बेचैनी को तुरंत अपने फोन या किसी और चीज से मिटा देना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इस अधूरेपन को, इस बेचैनी को अपनी सच्चाई मान लें और उस विद्रोही आशा को अपना लें, तो क्या हम दुनिया के मौजूदा दुखों और अनसुलझे अन्यायों का सामना अधिक साहस के साथ कर पाएंगे?
बिल्कुल कर पाएंगे।
शायद असली सफलता किसी बड़े सिंहासन पर बैठना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि उस कुर्सी पर बैठकर भी हम मिट्टी और राख ही हैं, और हमारा असली काम उस कुर्सी के बाहर उन लोगों के बीच है जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सच में एक बहुत गहरी और सोचने वाली बात है।